जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी Yeah. नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मय की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरु श्री युत पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता आठवां अध्याय श्लोक संख्या 19 भूतग्रामः सः एव अयम् भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवशः पार्थ प्रभवति अहः आगमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे वशः पार्थ
रात्र्यागमे वशः पार्थ
प्रभवत्यहरागमे
प्रभवत्यहरागमे
भूतग्रामः स एवायम्
भूतग्रामः स एवायम्
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे वशः पार्थ
रात्र्यागमे वशः पार्थ
प्रभवत्यहरागमे
प्रभवत्यहरागमे
भूतग्रामश्च एवायम्
भूतग्रामश्च एवायम्
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्यागमे वशः पार्थ भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ
प्रभवत्यहरागमे
भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे माताजी भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे भूतग्रामः
समस्त जीवों का समूह
सह वही एव निश्चय ही अयम् यह भूत्वा भूत्वा बारं बार जन्म लेकर प्रलीयते विनष्ट हो जाता है रात्रि रात्रि के आगमे आने पर अवशः स्वतः पार्थ हे प्रथा पुत्र प्रभवति प्रकट होता है अहह दिन आगमे आने पर अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं तात्पर्य अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं किंतु रात्रि के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंततो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सब का संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं, किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस रविवार के कार्यक्रम के लिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत है। हाँ, मैंने क्या कहा? एक ही है, गोपीनाथ गोकुलानंद मंदिर में कोई अंतर नहीं है। आज सुबह हम गोपीनाथ की कोई कुछ पढ़ रहे थे तो गोपीनाथ मन में है, गोकुलानंद। गोकुलानंद भी जो गोकुल को आनंद प्रदान करते हैं वो गोपियों के नाथ भी है, तो कोई अंतर नहीं है। तो फिर भी राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में क्या होता है, हम सब की परिस्थिति क्या हुई है इतने करोड़ों करोड़ों सालों से, और आगे चल के सबकी दशा क्या होगी, इसका भी उल्लेख यहां करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इसके पहले कहते हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुहु। सहस्र युग पर्यंतम अह अर्थात दिन, ब्रह्मणो अर्थात ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी का एक दिन है वह सहस्र युग पर्यंतम, युग अर्थात चतुर्युग। आप जानते हैं कि चार युग होते हैं, सत्य त्रेता द्वापर और कली, इन चारों को मिलाकर चतुर्युग कहते हैं। तो ऐसे सहस्र चतुर्युग, 1000 चतुर्युग जब दोहराए जाते हैं तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसी तरह से रात्रिम युग सहस्रांते ते अहोर रात्रि विदो जनाः, तो उसी तरह से ब्रह्मा जी की रात्रि है, उतने ही समय की अवधि है। तो कलयुग की अवधि है 4,32,000 और चतुर्युग की अवधि है उससे 10 गुना अर्थात 43 लाख साल। 43 मराठी में क्या 43, तो 43 मराठी में 43 बोलते हैं। तो 43 लाख साल ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं और उतने ही उनकी रात्रि अर्थात उनके 24 घंटे हैं, लगभग 860 से थोड़ा ऊपर लाख साल, ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटों के बाद या ब्रह्मा जी की एक दिन 12 घंटों के बाद क्या होता है, इसका उल्लेख आज के श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन अंत आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का दिन जब होता है तो हमारे ब्रह्मांड में जितने भी लोक हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनमें सारे जो जीव हैं, सो प्राणी हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो कार्य करते रहते हैं। उनको अनुकूल कोई परिस्थिति मिल जाती है प्रकृति के नियमों के द्वारा, ऐसे संसार चलता है। ब्रह्मा जी के दिन के अंत में केवल ऊपरी लोगों के जो निवासी हैं वो रह जाते हैं, जो निम्न श्रेणी के जो लोग हैं ब्रह्मांड में, वहां बाढ़ आदि होने के कारण, प्रलय होने के कारण वहां के जीव रह नहीं सकते, तो वो भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं। जब विलीन होते हैं तो उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, उनका व्यक्तित्व भी नष्ट नहीं होता है, वो केवल सुप्त अवस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। जैसे हमारे दिन के अंत में जब हम दिन भर यहां वहां घूम रहे होते हैं और तरह तरह के कार्य कर रहे होते हैं, कभी मंदिर में जाना, कभी दफ्तर में जाना, कभी बाजार में जाना, कभी यहां वहां, इतने सारे कार्यों को संपन्न करके रात में आते हैं, अपने घर में आके सो जाते हैं। जब सो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में आए और सो गए तो हमारा व्यक्तित्व नष्ट हो गया, ऐसे नहीं होता है। फिर पुनः अगले दिन हम जाग जाते हैं, फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। तो उसी तरह से जब ब्रह्मा जी का एक दिवस आता है तो निम्न श्रेणी के जितने भी लोक हैं उनके सारे निवासी भगवान विष्णु में विलीन हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी के रात्रि का अंत होने पर पुनः ये सारे जीवों को प्रकट कराया जाता है भगवान विष्णु की कृपा से, और उनको उपयुक्त एक शरीर मिलता है किसी एक उपयुक्त ग्रह या लोक में, किसी को पृथ्वी लोक में, किसी को कहीं सुतल अतल वितल जहां भी हो, किसी को मनुष्य देह प्राप्त होता है तो किसी को पंछी का देह, किसी को कीड़े का देह इत्यादि। तो ऐसे संसार चलता है। और फिर ब्रह्मा जी की जो 43वें 860 करोड़ जो एक दिन है 24 घंटों का, तो उससे ऐसे 30 दिन से एक महीना बनता है और ऐसे 12 महीनों से एक साल होता है ब्रह्मा जी का, और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी के उनकी जीवन की आयु होती है, अवधि होती है, और ये सारे ब्रह्मांड की अवधि भी होती है। इतना लंबा समय इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी के चौक एक दिन है 430 करोड़ साल, केवल एक दिन। और ब्रह्मा जी के 100 साल में कितने होंगे, देखिए आप में से जो गणित अच्छा करते हैं आप गणित करके देख सकते हैं, 860 करोड़ × 30 × 12 × 100, इतने साल हैं ब्रह्मा जी की अवधि अर्थात हमारे ब्रह्मांड की अवधि। तो उसके बाद ब्रह्मा जी की मृत्यु भी होती है, जो सृष्टिकर्ता होते हैं उनकी मृत्यु भी होती है। और ब्रह्मा जी यदि शुद्ध भक्त हैं तो वो भगवान के धाम में चले जाएंगे, यदि वो शुद्ध भक्त नहीं हैं तो उन्हें भी यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र में रहना पड़ता है। फिर अन्य सारे प्राणियों के साथ में वो भी भगवान विष्णु, इस बार महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, उनका अस्तित्व उनका व्यक्तित्व नष्ट नहीं होता है। पुनः जब नए ब्रह्मा जी का जन्म होता है, नए सृष्टि का सृजन जब भगवान विष्णु करते हैं, तो पुनः सारे जीव जो भगवान विष्णु में विलीन थे, सुप्त अवस्था में थे, सो रहे थे, अचेतन अर्थात सोए हुए अवस्था में थे, उनको पुनः एक अवसर मिलता है कार्यों को जारी रखने के लिए। और किस अवस्था में जारी रखते रहते उनके कार्य रहते हैं, जिस अवस्था में उन्होंने अपने पिछले सृष्टि के अंत में कार्य किए थे, जो उनके कर्म फल थे, उन कर्म फलों के अनुसार उनको नए सृष्टि में उपयुक्त शरीर लोक परिस्थिति आदि प्रदान की जाती है। तो देखिए भगवान की बुद्धि कितनी अपार है, कितनी विशाल है, कितने जीव हैं इस सृष्टि में, इसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। अनगिनत जीवात्माएं हैं जिन तरह तरह के 84 लाख योनियों में उनके उनकी उपस्थिति है। और भगवान की बुद्धि इतनी विशाल है कि प्रत्येक जीव के जो कर्म हुए हैं आज तक उनको पता है, और हर एक जीव को अपने अपने कर्म फलों के अनुसार वो अगले सृष्टि में पुनः कार्य करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। देखिए भगवान होना इसका क्या मतलब है। दुर्भाग्य है कि जगह जगह लोग ये कहते मैं भी भगवान हूं, आप भी भगवान हो। कोई थोड़ा चमत्कार कर लेता है, कहते ये भी भगवान है, थोड़ा पानी पे चलते हैं, कुछ विभूति या सोना निकालते हैं, ये भगवान है। तो भगवान और ये जो भगवान की शक्ति है कि जिसके द्वारा वो हर एक जीव के कर्मों को जान सकते हैं, याद रखते हैं, और उसके अनुसार उनको एक परिस्थिति प्रदान करते हैं आने वाले सृष्टि में, ये तो केवल भगवान की बुद्धि और शक्ति का एक लेश मात्र प्रदर्शन है। भगवान की शक्ति तो अचिंत्य है, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हम। इस तरह से पुनः पुनः ये चक्र चलते रहता है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई न्याय हैं जिनके द्वारा हम ऐसे दार्शनिक तत्वों को हम आसानी से समझ सकते हैं। इनको सूत्र कहते हैं, जैसे वेदांत सूत्र। सूत्र क्या होता है? हाँ, रस्सी, वो तो है, परंतु जब किसी सत्य को या किसी तत्व को या किसी संसार के महत्वपूर्ण ज्ञान को हम संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसको सूत्र कहते हैं। जैसे कहावतें होती है ना, मुहावरे कहावत आदि होते हैं, बहुत संक्षिप्त में बहुत बड़ी बात या गहरी बात कही जाती है 3-4-5 शब्दों में। तो जो जानकार व्यक्ति है वो उन 3-4 शब्दों से बहुत कुछ समझ जाता है। ऐसे बहुत सारे कहावत हैं, मुहावरे हैं, मराठी में मण मणते हैं, बोलते हैं मण, जैसे कि अंगूर खट्टे हैं। आपने से कितने भक्तों ने ये मुहावरा सुना है, अंगूर खट्टे हैं? बस इतने ही, अंगूर खट्टे हैं। मराठी में भी है ना, ये क्या बोलते हैं, द्राक्ष अंबटा है। तो इसका मतलब क्या, ये है अंगूर खट्टे हैं। तो कोई व्यक्ति यदि नहीं जानता है कि ये मुहावरे का मतलब क्या है, वो सोचेगा कि आप सचमुच अंगूर के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कोई बाजार से अंगूर खरीद के लाए होंगे और आपने अंगूर खा लिया और अंगूर खट्टे थे इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके बोलने का उद्देश्य कुछ और है। उद्देश्य क्या है आपका? कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने कुछ कार्य करना चाहा परंतु वो नहीं कर पाया, असमर्थ रहा उस कार्य को संपन्न करने के लिए, परंतु बाद में कहता है अरे वो करने लायक था ही नहीं, वो बेकार चीज था, तो करने के लिए कोई फायदा नहीं, जब नहीं हो सका तो ऐसे बोलने लगा। इसके पीछे एक कहानी भी है छोटी सी जो आपने बचपन से सुनी होगी। एक लोमड़ी थी, उसको भूख लगी थी तो वो यहां वहां घूम रही थी भोजन के लिए। अचानक अंगूर का कोई अंगूर की लताएं देखी यहां वहां जो ऊपर दीवार के ऊपर थी, तो लोमड़ी ने कूद कूद कर उस उन अंगूरों को प्राप्त करने का प्रयास किया, असफल हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी, थक जाने के बाद भी, छोड़ा अरे ये तो अंगूर खट्टे हैं, तो नहीं मिला तो क्या कोई नुकसान नहीं होगा, वैसे भी खट्टे थे ये। तो देखिए जब हम ये तीन शब्द कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, इसके पीछे एक सारी कहानी है, एक संदेश है, उपदेश है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं केवल तीन शब्दों में कह देते हैं अंगूर खट्टे हैं, और सामने वाला समझ भी जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से साधारण दुनिया में भी हमको अनुभव है कि किसी एक बहुत ही बड़ी बात को बताने के लिए संक्षिप्त में दो तीन चार पांच शब्दों में ऐसे कहावतें होती हैं, तो इनको भी हम सूत्र कह सकते हैं। आजकल आप में से जो कॉलेज आदि में जाते हैं, आप जानते हैं कि विज्ञान आदि में भी गणित के दृष्टि से बहुत सारे वैज्ञानिक नियमों को संक्षिप्त रूप में गणित में प्रस्तुत किया जाता है ना। थोड़े आंकड़े लगाए जाते हैं, अक्षर लगाए जाते हैं, और उस चीज से बहुत कुछ समझ में आता है। जो जानकार है वो जान लेगा, जो नहीं जानता उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसी तरह से जो दार्शनिक तत्व होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं, और कभी कभी उन तत्वों को संक्षिप्त रूप में प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि वेदांत, सारे वेदों का अंत जो सिद्धांत है वो वेदांत सूत्र में व्यास जी ने कहा है। तो इसमें लगभग 550 ऐसे सूत्र हैं, जैसे आनंदमयोभ्यासात, कि परम सत्य जो है वो सदैव आनंदित होते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब जब कि मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो आपको भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। तो ऐसे सूत्र बहुत सारे जिनको वेदांत सूत्र कहते हैं। उसी तरह से पतंजलि मुनि ने अपने योगाभ्यास के संदर्भ में योग सूत्रों की रचना की है, तो योग सूत्र होते हैं। तो इसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने शिक्षाओं में, अपने ग्रंथों में, प्रवचनों में ऐसे कई सूत्रों का प्रयोग किया जो न्याय के ऊपर आधारित है, तो उनको हम न्याय सूत्र कह सकते हैं। तो बहुत सारे न्याय सूत्र हैं, तो उनमें से एक न्याय सूत्र है सुप्तोत्थित न्याय। सुप्त अर्थात सोना, उत्थित अर्थात उठना, जागना। तो ये न्याय क्या है? अभी इसमें केवल दो शब्द या तीन शब्द है, सुप्त उत्थित न्याय, लेकिन इन तीन शब्दों से बहुत कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, इसके लिए एक उदाहरण देते हैं जिसका अनुभव हम सबको है। ये बात बताइए, रात में से कितने भक्त आप सोते हैं? हाथ ऊपर कीजिए, कौन कौन सोते हैं रात को? अच्छा, ये भी बताइए, रात को सोने के बाद सुबह को कितने भक्त उठते हैं? अच्छा, और जब सुबह को उठ जाते हैं तो आप में से कितने भक्तों को याद नहीं रहता है कि मैं कौन हूं, ये कहां कैसे आ गया, मुझे क्या करना है, स्नान करना नहीं, याद नहीं रहता, पता नहीं चलता। तो आप में से कितने भक्त हैं जिनको याद नहीं रहता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कौन हूं? एक भी हाथ नहीं। तो सुबह जब जागते हैं तो हमें याद रहता है, जागते ही पता चलता है कि अरे मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूं और मुझे ये नौकरी करनी है, अब जल्दी से तैयार होके माला जप करके मुझे नौकरी में जाना है। भले रात में वो व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो, उसने स्वप्न देखा होगा कि मैं राजा हूं, परंतु स्वप्न टूट जाता है, नींद खुल जाती है, प्रातः काल में उठ जाता है व्यक्ति, फिर समझ लेता है अरे मैं तो राजा नहीं हूं, मैं तो फलाना फलान व्यक्ति हूं, मुझे अब नौकरी के लिए जाना है। तो नींद के समय बिल्कुल विस्मृति होती है, विस्मृति अर्थात हम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक जानवर में और राजा में नींद के समय कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सोते समय राजा भी सब कुछ भूल जाता है कि वो राजा है, वो कौन है, राज्य क्या है, सब कुछ नहीं पता उसको, वो भूल जाता है। उसी तरह से कुत्ता भी जब सोता है सड़क के ऊपर, उसको भी याद नहीं रहता है कि मैं कुत्ता हूं, मैं कौन हूं, क्या हूं, हो सकता है वो भी स्वप्न देख रहा हो कभी कभी। तो इस तरह जागृत अवस्था में भले ही राजा और पशु में बहुत अंतर हो, परंतु सोते समय दोनों बराबर के हो जाते हैं, दोनों ही भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं, पूर्णतया विस्मृति की अवस्था में रहते हैं दोनों। लेकिन जब नींद से जाग जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है, राजा को पता चलता है मैं राजा हूं और मुझे बहुत सारे कार्य करने हैं, प्रजा को संभालना है, राज्य को चलाना है, और कुत्ता भी सोच लेता है मुझे भौंकना है, मुझे भोजन के लिए घूमना है। तो जैसे ही नींद खुल जाती है सुप्त उत्थित, तो नींद से जब हम उठ जाते हैं तुरंत पता चल जाता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, कहां जाना है इत्यादि, ये सब लोग जो मेरे साथ में इस घर में ये कौन है सब याद रह जाता है। इसको सुप्तित्थत कहते हैं, सुप्त और उत्थित, सुप्तोत्थित। तो ऐसे रात के समय में जो विस्मृति होती है वो भगवान की कृपा से होती है, क्योंकि दिन के समय हम इतना परिश्रम करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शरीर और मन हमारे दोनों थक जाते हैं और उनको विश्राम की आवश्यकता होती है, और यदि विश्राम नहीं मिले हमें ठीक से रात को, तो आने वाले दिन में न तो मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से हम ठीक से काम कर सकते हैं। इसलिए रात को नींद ठीक से होना ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो भगवान की कृपा से हमें विस्मृति होती है, फिर जब शरीर ताजा हो जाता है, मन भी ताजा हो जाता है नींद के बाद, विश्राम के बाद, पुनः जब नींद खुल जाती है उस समय भी भगवान की कृपा से हमें स्मृति होती है, हमें याद होता है कि हम कौन हैं, कहाँ हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वो कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के, प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूं, और मुझसे ही हरेक व्यक्ति को, हरेक प्राणी को स्मृति अर्थात याददाश्त आती है, विस्मृति या ज्ञान आ जाता है। स्मृति ज्ञानम और अपोहनम, अपोहन अर्थात विस्मृति, भूल जाना। तो ये तीनों चीजें भगवान की कृपा से आती हैं। तो नींद आती है तो भगवान की कृपा से, नींद और नींद के समय भूल जाते हैं सब कुछ भगवान की कृपा, नींद से जागते हैं वो भी भगवान की कृपा, जागकर सब कुछ याद रहता है वो भी भगवान की कृपा। भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम सो गए तो सोए ही रहेंगे, उठेंगे नहीं, फिर राम नाम सत्य है होगा फिर बाद, है ना। तो भगवान हमें सुलाते हैं, भगवान हमें जगाते हैं, सुलाकर विस्मृति देते हैं, जगाकर स्मृति देते हैं। तो जिस तरह से हम सोते हैं और सुबह उठकर ऐसे कार्य करते हैं कि मानो कल और आज में कोई अंतर नहीं था, कल के कार्यों को, कल के लोगों को अब सब हम जारी रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के समय भी हम विस्मृति की अवस्था में रहते हैं। मृत्यु के बाद जब हम शरीर छोड़ते हैं तो फिर हमें पता नहीं चलता है हम कौन हैं, क्या हैं। मृत्यु के पहले भी जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है किसी कारण से, तो बेहोश ऐसे अवस्था में भी उसे पता नहीं चलता। तो नींद, फिर बेहोश हो जाना, फिर मृत्यु। मृत्यु के समय हमें पता नहीं चलता, परंतु यमराज देखते हैं और भगवान जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो भी सब देखते हैं और जानते हैं। फिर जब यमराज के दरबार में निर्णय होता है, यमराज की अदालत में घोषणा की जाती है कि हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, कौन से योनि में होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, किस परिस्थिति में हमें जन्म मिलेगा, कितना सुख और दुख हमें मिलना है आने वाले जीवन में, ये सब तय होकर हम जन्म लेते हैं। और जैसे ही जन्म लेते हैं फिर ऐसे कार्य शुरू कर देते हैं कि मानो पहले से कर रहे हैं। तो जैसे किसी जीव को एक कुत्ते का शरीर मिलता है तो तुरंत जन्म लेते ही वो भौंकना शुरू कर देता है। यदि पिछले जन्म में वो मनुष्य था तो उसको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कैसे भौंकना है, पिछले जन्म में मैं मनुष्य था, अब मैं कुत्ता बन गया, पिछले जन्म का याद नहीं रहेगा उसको। परंतु अब भौंकना है वो जानेगा, क्योंकि अंदर से परमात्मा उसको बताते अब तुम कुत्ता हो, तुम कुत्ते हो, इसलिए कुत्ते की तरह तुम्हें भौंकना चाहिए। कुत्ते का भोजन वो खाएगा, हमारी चावल और चपाती खाने के लिए नहीं आएगा वो। इस तरह से मृत्यु के बाद भी भगवान ही हमें याद दिलाते हैं। जैसे नींद के समय हमें विस्मृति दिलाते हैं, तो मृत्यु के बाद भी हमें भगवान विस्मृति दिलाते हैं। और नींद के बाद फिर हमारे कर्मों के अनुसार हमें अगला जीवन भी भगवान ही देते हैं, और उस जीवन में भी उपयुक्त ज्ञान देंगे, उपयुक्त स्मृति देंगे, जिससे कि हम उस शरीर में जो कार्य है वो कर सकें। चाहे वो राजा का शरीर हो, एक साधारण मनुष्य का शरीर हो, पेड़ का हो, कुत्ते का हो, किसी का कोई भी शरीर क्यों ना हो। इस तरह से ये सुप्तोत्थित न्याय है। तो ये उदाहरण दिया गया है सोना और फिर जागृत होना, उसी तरह से मर जाना, पुनर्जन्म होना। और आगे चल के प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में जब निम्न श्रेणी के लोगों का अंत हो जाता है या प्रलय हो जाता है, तो ये सारे जीव जो है वो भगवान विष्णु में निवास करते हैं बहुत लंबे समय के लिए। कितने समय के लिए? 430 करोड़ सालों के लिए सो जाते हैं। रात को हम कितने समय के लिए सोते हैं? 6-7, 7.5 घंटे। हाँ, आके मंदिर में क्लास में भी सोते हैं, लेकिन वो कम समय के लिए होता है। कभी झपकी आ जाती है, 2-4 मिनट सो जाते हैं। रात के समय ज्यादा सोते हैं, 6 घंटे। फिर मृत्यु के बाद सोते हैं कई वर्षों तक, क्योंकि हम जब यमराज के यहां जाते हैं वहां समय की गणना अलग होती है। इसलिए पृथ्वी लोक के हिसाब से देखा जाए तो कई साल बीत जाते हैं। तो रात में 6-8 घंटे सोते हैं, मृत्यु के बाद कई वर्ष सोते हैं, ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में 430 करोड़ साल सोते हैं, और फिर जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है, उस समय बहुत लंबे समय तक सोते हैं। फिर जब भगवान पुनः सृष्टि का सृजन करते हैं, फिर से हमें स्मृति आती है, हमारे कर्मों के अनुसार हमें एक शरीर मिलता है। कितने करोड़ों 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 सालों के बाद भगवान याद रखते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे जीवात्मा के साथ उसके कर्म चलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भूल जाएंगे, कभी कभी कोई गुनाह कर देता है और कभी कभी पुलिस वाले भी भूल जाते होंगे, इतने सारे गुनाहगारों को देखते हैं, कभी एक चोर छोटा कर रहा है उसको भूल जाते हैं कि उसने किया है। लेकिन भगवान के न्याय में ऐसे नहीं होता। हर एक जीव का जो कर्म है उसको अच्छी तरह से लिखा है भगवान के किताबों में, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इस तरह से हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलते हैं इस जीवन में, अगले सृष्टि में। देखिए भगवान की व्यवस्था कितनी अद्भुत है। तो यहां पर इस श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन जब आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। वो सो रहे थे ब्रह्मा जी के रात्रि में, 430 करोड़ साल सोके सब उठे हैं, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि हम सारे 430 साल सोए हुए हैं। उनको ऐसे लगता है कि बस समय ऐसे ही बीत गया। हम जब नींद से उठ जाते हैं हमको पता नहीं चलता कि कितने घंटे, 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, हमें लगता है कि बस कल ही सोया भी उठा, घड़ी साथ में, इसलिए हमको पता चलता है। उसी तरह से 430 करोड़ साल सोने के बाद भी हमको पता नहीं रहता है कितने साल हो गए। हम शुरुआत करते हैं ऐसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये है भगवान की अद्भुत अवस्था। तो चाहे वो मृत्यु के समय हो, नींद के समय हो, प्रलय के समय हो, संपूर्ण सृष्टि के विनाश के समय हो, इस तरह से हमारे कर्मों के फल हमारा पीछा करते रहेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि हमारे कर्म या कर्मों के फल हमारा पीछा इस तरह से करते रहेंगे जैसे कि हमारी छाया हमारे पीछे आती है, या तो फिर जैसे एक गाय का बछड़ा गाय के भीड़ में, झुंड में अपनी मां को ढूंढ निकालेगा। हम जब जाते हैं हमारे लिए सारे गाय एक जैसे दिखते हैं, परंतु जब गाय का बछड़ा होता है वो सही अपनी मां को ढूंढ लेता है, बहुत सारे गाय बीच में होने के बाद भी। ठीक उसी तरह से हमारे जो कर्मों के फल हैं, हम चाहे कहां भी रहें वो हमें ढूंढ के निकालेगा। यह है भगवान की व्यवस्था। तो इस तरह से हमारा सुप्तोत्थित न्याय, हम जागते हैं सोते हैं भूल जाते हैं, याद दिलाया जाता है फिर से भूल जाते हैं, ये अनादि काल से चल रहा है, ये हमारा इतिहास है। तो इसको सुप्तोत्थित न्याय कहते हैं। अब इस प्रवचन के बाद आप किसी अन्य भक्तों को, चाहे जो आज आए हैं नहीं, इसके बारे में समझाइए सुप्तोत्थित न्याय क्या है। सुप्त उत्थित, सुप्त अर्थात सो जाना, उत्थित अर्थात जाग जाना, उठ जाना। अब वास्तव में चाहे हम सुप्त अवस्था में हो या जागृत अवस्था में हो, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सुप्त अवस्था ही है, क्योंकि हम भगवान की विस्मृति में हैं। हम कौन हैं, हम जीवात्मा हैं, ये हमें नहीं पता। अपने आप को भौतिक शरीर मान के बैठे हैं। और ऐसे अवस्था में दो मिथ्या भावनाएं हमारे मन में आती हैं, एक कि मैं सृष्टि करता हूं और दूसरा कि मैं भोगता हूं। तो इन दो कारणों से हम यहां अनादि काल से ये सुप्तोत्थित चक्र में पड़े हुए हैं, परंतु वास्तव में आत्मा की दृष्टि से ये सब निद्रा ही है, नींद ही है, अज्ञान है, विस्मृति है। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया उत्तिष्ठता प्राप्य वरा निबोधत जाग्रता, कठोपनिषद में बताया गया है कि अब हे जीव जागो, उत्तिष्ठता उठो, जाग्रता जाग जाओ, प्राप्य वरान निबोधत, और अपने आप को समझ लो कि आप कौन हो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में चले आओ, है ना। इस तरह से शास्त्रों में हमें प्रेरित किया जाता है कि तुम यहां सोए हुए हो, अभी जागो, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके जागो कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम भगवान श्री कृष्ण के अंश हो, भगवान के दास हो, इसलिए उनकी भक्ति करना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तो इस तरह हमें स्वप्न की दुनिया से जागना है। जैसे व्यक्ति रात को सोचता है मैं राजा हूं, और फिर दिन को जाग के फिर सोचता है अरे मुझे तो नौकरी में जाना है, उसी तरह से हमारे बद्ध अवस्था में हम सोचते हैं कितने सारी चीजें, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं ये हूं, वो हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, सब स्वप्न है, ये सब अज्ञान है। वास्तव में हमारा परिचय है कि हम आत्मा हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। जब हम इस साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं तो यह है जागृत अवस्था, वास्तव में जागृत अवस्था। तो इसलिए जब कठोपनिषद में बताया जाता है उत्तिष्ठ प्राप्य वरा निबोधत जागृत, ये इसका तात्पर्य है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं जीव जागो गोरा चांद बोले, वो कहते हैं कि जीव जागो कि तुम सो रहे हो, जीव उठो गोरा चांद बुला रहे हैं, कौतो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो ले। अभी कितना सोगे तुम माया के गोद में, इतने जन्मों से ये सुप्तोत्थित चल रहा है और कब तक सोए रहोगे, अब जागो, वास्तव में तुम सुप्त अवस्था में थे इतने करोड़ों सालों तक, अब तुम्हें जागना है और श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। तो अभी ये सुप्तोत्थित न्याय का दूसरा अर्थ है, पहला भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक, कि हमें आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करनी है। एक सोए हुए व्यक्ति को ध्वनि के द्वारा जागृत किया जा सकता है। यदि उसका घर, उसके घर में आग लगा हुआ है तो जोर जोर से कोई चिल्लाएंगे आग 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 उठो उठो, तो व्यक्ति जाग जाएगा और जाग के फिर उसको पता चलेगा अरे घर में आग लगी है, चलो भागो घर से। तो उसी तरह से हम सोए हुए हैं माया के गोद में, फिर जब भक्त लोग आके हमें बताते हैं देखो हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करो, फिर उस ध्वनि से, दिव्य ध्वनि से हम जागृत हो जाते हैं। आत्मा जो कि सुप्त अवस्था में है वो अभी जागृत हो जाती है। तो यह है वास्तविक सुप्तोत्थित न्याय, सोए हुए आत्मा को जगाना। और फिर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहेंगे, कृष्ण कथा सुनते रहेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, तब अंततः जब शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो मृत्यु के बाद हमें पुनर्जन्म यहां नहीं लेना पड़ेगा, हम भगवान श्री कृष्ण के धाम में जाएंगे और वहां पे कोई सुप्त अवस्था नहीं है, वहां हम जागृत अवस्था में रहेंगे, आनंद का जीवन, सच्चित आनंद जीवन को हम प्राप्त करेंगे, यही जीवन का उद्देश्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कौन से न्याय के बारे में आपको बताया आज? सुप्तोत्थित। दो शब्द कौन से हैं? सुप्त और उत्थित। तो भौतिक दृष्टि से कैसे ये सुप्तोत्थित है, नींद से हम जागते हैं, फिर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, सृष्टि के विनाश के बाद फिर हमें हम सुप्त होते हैं, फिर से हमारे कर्मों के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है, ये सब एक ओर। और दूसरी ओर कि इतने करोड़ों करोड़ों सृष्टि समाप्त हो गए लेकिन भगवान को हमने याद नहीं किया, अब भगवान को हमें याद करना है, आत्मा को जगाना है माँ भगवान के नाम के ध्वनि से, और फिर भगवान के धाम तक पहुंचना है। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा अच्छा प्रश्न किसी के हैं इस संबंध में तो आप पूछना माइक हरे कृष्णा
महाराज प्रश्न यह है कि जैसे जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं तो भी हम लोग निष्क्रिय नहीं होते हैं हम लोग कुछ स्वप्न ले रहे होते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि हम अपने सूक्ष्म शरीर में सक्रिय हैं तो क्या ऐसे ही जब ये ब्रह्मा के जो दिवस के अंत में सारे जो निम्न श्रेणी के प्राणी जब विलीन होते हैं तब वो क्या सूक्ष्म रूप से सक्रिय रहते हैं
नहीं वो तो सुषुप्ति की अवस्था में सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद एक अवस्था है जागृत अवस्था दूसरा है स्वप्न अवस्था और तीसरा है सुषुप्ति की अवस्था तो सुषुप्ति अर्थात इतनी गहरी नींद कि उसमें स्वप्न भी नहीं आते तो जब हम भगवान में रहते हैं सृष्टि के विनाश के बाद में तो उस समय स्वप्न भी नहीं केवल सुषुप्ति गहरी नींद में जैसे जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है उसे कुछ स्वप्न भी नहीं आते
मराठी वेळेस आम्ही ज्या वेळेला गाड मुद्रामध्ये असतो त्यावेळेला एकदा माणूस मरतो इथे कसं काय मरतो
काय बसताला
शरीर छोड करताय ना
अच्छा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति यदि गहरे नींद में होते हुए अपने प्राण को त्यागता है तो उसकी दशा क्या होती है हाँ? उसकी गति कौन सी होती है जैसे उसने कर्म किए हैं वैसे ही उसको गति मिलेगी साधारणतः जो प्राण त्यागने के समय जो हमारी चेतना होती है वैसे ही हमें एक अगला शरीर मिलेगा अगली गति प्राप्त होगी यम यम वापि स्मरण भावम जजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः तो जो भी हमारी चेतना मृत्यु के समय रहती है उस चेतना के अनुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होता है परंतु मृत्यु के समय की चेतना किस चीज पर निर्भर है कि आजीवन हमें किस तरह की चेतना का अनुशीलन किया है यदि हम हमारी चेतना दिव्य चेतना बनाने का प्रयास हमने आजीवन किया है तो मृत्यु के समय भी वैसी ही चेतना होगी यदि जीवन भर हमारे कार्य केवल भौतिक रहे हैं तो चेतना भी अंतकाल में भौतिक रहेगी ठीक है
कभी कभी भक्त कहते हैं कि या कोई साधारण व्यक्ति भी कहते हैं कि नींद में हमें सपनों में भगवान का दर्शन किया या कोई अवतार का दर्शन किया तो कैसे समझ सकते हैं कितना हद तक ये वास्तविक सत्य है या केवल एक आभास है क्या है
वो तो उनके और भगवान के बीच में अब हम कौन होते वाले हैं बोलने के लिए आपने स्वप्न देखा कि नहीं देखा अब कैसे साबित करेंगे ना वो साबित कर सकते हैं ना हम साबित कर सकते हैं तो कभी कभी ये सत्य हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है तो ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किस स्तर पे है कभी कभी ऐसे भगवान आते हैं स्वप्न में अवश्य आते हैं कभी कभी और इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आए तो फिर कुछ खराब हो गया नहीं आए भगवान स्वप्न में या न आए कम से कम जागृत अवस्था में तो भगवान मन में रहने चाहिए है ना
जब हम कोई भक्त शरीर छोड़ता है और वो भगत धाम चला जाता है
वहाँ उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी चला जाएगा
या उनके साथ
सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है मन बुद्धि अहंकार
नहीं सूक्ष्म शरीर तो भौतिक है ना कोई भी भौतिक चीज वो भगवान के धाम में नहीं जा सकती क्योंकि भगवान का धाम आध्यात्मिक है
महाराज लेकिन वहां पे अगर भगवान की सेवा करनी है तो वहां पे बुद्धि चाहिए वहां पे
हाँ तो वो सब आध्यात्मिक है
आध्यात्मिक मन बुद्धि है
सब कुछ आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक बुद्धि आध्यात्मिक मन सब कुछ इंद्रिया सब कुछ आध्यात्मिक
नित्य अहंकार वगैरह नहीं रहेगा लेकिन आध्यात्मिक मन बुद्धि और अहंकार वहां
सही अहंकार रहेगा मिथ्या अहंकार नहीं रहेगा मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं ये भौतिक शरीर हूं सही अहंकार क्या है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं ये रहेगा और आध्यात्मिक शरीर में हमें जानना चाहिए कि आत्मा और शरीर में अंतर नहीं रहता यहां जब भौतिक जगत में रहते हैं तो आत्मा और शरीर में अंतर रहता है परंतु आध्यात्मिक जगत में हमारा शरीर ही आत्मा आत्मा ही शरीर इसलिए बुद्धि मन इंद्रियां शरीर आत्मा सब एक सब चेतन
जब हमें जन्म मिलता है तो पिछले जन्म लिया है उसके कर्मों के अनुसार हम स्वभाव प्राप्त करते हैं और फिर भक्तों के संग में कुछ अच्छी बातें सीखते हैं लेकिन जब कभी ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती है तो हमारा जो मूल स्वभाव वापस जागृत हो जाता है तो उससे कैसे बचा जाए ताकि चेतना को और अच्छे से शुद्ध करें
क्योंकि जो हमने कर्म किए हैं और जो हमारी जो प्रवृत्ति है इतने जन्मों से जो हमने प्रवृत्ति बनाई है वो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती है बहुत तीव्रता से लंबे समय तक भक्ति करने से ही वो पुरानी प्रवृत्तियां हमारी पूर्णतया नष्ट होती हैं तो ये संपूर्ण जीवन का एक संघर्ष है हमें ये नहीं अपेक्षा करना चाहिए कि एक साल दो साल पांच दस बीस पच्चीस तीस चालीस साल में भी ये सब ठीक होगा बिरला ही ऐसे कोई भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसके झट से एक क्षण में हो जाता है हो सकता है परंतु ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं साधारणतः व्यक्ति को आजीवन संघर्ष परिश्रम करना पड़ेगा अंत तक अंतिम सांस तक की परिश्रम चलेगा तो हमें ये निराश नहीं होना चाहिए कि अरे इतने साल हो गए अभी तक भौतिक इच्छाएं मन से गई नहीं वो होगा लेकिन हमें और तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उत्साह हमारा बढ़ना चाहिए कि और हमें भक्ति करनी चाहिए ताकि ये पुरानी प्रवृत्तियां हमारी बंद हो जाए ठीक है
हाँ। जो सब लोग देखते हैं जो कभी कोई सच होते हैं
जो स्वप्न लोग देखते हैं सच हो सकते हैं क्या कभी कभी हो सकते हैं कि कहीं एकाध बार कोई विशेष चीज हो किसी को कुछ विशेष शक्ति हो कभी वो भविष्य कभी देख सकते हैं अचानक कुछ ऐसे हो जाता है ठीक है परंतु वास्तव में ऐसे नहीं होता है कितने बार स्वप्न देखते हैं राजा है राजा कभी होता नहीं व्यक्ति है ना हम में से कितने भक्तों ने स्वप्न देखा होगा कि हम राजा हैं लेकिन राजा बने नहीं ना फिर भी हमको जाना पड़ता है नौकरी में यहाँ वहां जाना पड़ता है तो ऐसा नहीं है कि स्वप्न जो होगा आगे चल के सच होगा ऐसा नहीं है जैसे हमारे जागृत अवस्था के अनुभव हमारे कर्मों के ऊपर आधारित हैं वैसे जो स्वप्न अवस्था में भी जो अनुभव होते हैं वो भी हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है इसलिए कभी कभी रात में भयानक स्वप्न भी आते हैं और व्यक्ति नींद से जाग जाता है कभी नींद में ही चिल्लाता है कभी नींद में ही पसीने पसीने हो जाता है ऐसे एक भक्त था जो हम जानते हैं आश्रम में बहुत साल पहले यहाँ नहीं दूसरे जगह में उसको रात में ऐसे सपने आते थे और सपने में इतना चिल्लाता था जोर से पहली बार जब हुआ हम लोग सब मंदिर के अंदर सोते थे या ऐसे मंदिर था सब 20-25 हम लोग ब्रह्मचारी थे रहते सोते थे इतने जोर जोर से चिल्ला रहा, अंधकार में पता नहीं चले कहां से आवाज आ रही, कौन और क्या हो रहा, क्या हो गया। फिर बाद में पता चला कि नींद में कुछ सपना आ गया, बुरा सपना, नींद में ही बोल रहे हैं कुछ। तो ऐसे भी पुराने कर्मों के फल हैं। जागृत अवस्था में हो, स्वप्न अवस्था में हो, अच्छा अनुभव हो, बुरा अनुभव हो, ये सब हमारे पुराने कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। यहाँ क्या प्रश्न है, कि ये कहा नहीं जा सकता है मनुष्य जीवन में कि क्या होगा आगे, तो मृत्यु हमारे द्वार पर कब खटखटाएगा तब पता नहीं है। तो क्या ये ब्रह्मा जी के लिए भी ऐसे ही है, क्या उनकी जीवन की अवधि निश्चित है? ब्रह्मा जी की जीवन की अवधि निश्चित है 100 साल, परंतु हमारे जीवन की अवधि निश्चित नहीं है। लेकिन इससे ये मत सोचे कि चलो अच्छा हम भी ब्रह्मा बने, ब्रह्मा बनने से भी मृत्यु आएगी। इसलिए इससे अच्छा ये है कि हम सोचें कि हम भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएं और फिर भगवान के धाम में चले जाएं और जाते जाते अन्यों को, बहुत सारे लोगों को लेके जाएं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। एक और प्रश्न
कह रहे थे कि जैसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, भौतिक इच्छाएं मन में रहती है, तो कई बार भौतिक इच्छाओं से हारते हारते हम ये मान लेते हैं कि ये भी हमारे साधन भक्ति के जीवन का एक हिस्सा ही है और सबको ये परेशान करता है, तो हमें भी करे तब क्या समस्या है, इसको एक नॉर्मली मान लेते हैं।
हल्का भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, जब हम कहते हैं कि हताश होकर, इतना निराश होकर फिर भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए, ये एक बात है, लेकिन दूसरे कोने तक नहीं जाना चाहिए कि हल्का ही ले लेना, क्योंकि ठीक है ना, सब लोग कोई बात नहीं, ऐसे भी नहीं, संघर्ष करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, साधना अच्छी से करनी चाहिए, प्रयास के बिना कुछ नहीं होगा, तो प्रयास तो आवश्यक है। ठीक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में सभी उपस्थित भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आज के बहुत सुंदर प्रवचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को। उपस्थित भक्तों से अनुरोध है 3 बार बहुत उच्च स्वर में हरि बोल से महाराज को धन्यवाद। विशेष रूप से उन भक्तों का